सवाल मेरा दावत और ये जो तहरीकें होती हैं, मुख्तलिफ मिशन होते हैं, मज़हबी भी समाजी भी, उनसे मुतल्लिक है। एक बड़ी तादाद अफराद की उनसे वाबस्ता होती है। देखने में आया है कि बसा औक़ात वो फ़राइज़ मनसबी जो उनके प्राइमरी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनसे सरफ़ नज़र करके वो सारी तवज्जुहात अपनी उस दीनी दावत या अपनी तहरीक के मूवमेंट या मिशन के लिए सर्फ कर देते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या दीन इस्लाम ने कोई हुदूद व शराइत बताई हैं कि जब आप किसी काम में सरगर्दा हों तो किस हद तक आपने उसमें अपनी सलाहियतें सर्फ करनी हैं, और किस हद तक आपकी जो अपनी ज़िम्मेदारी हैं। लोग आमतौर पर दीनी तहरीकों के हवाले से सहाबा किराम की मिसाल देते हैं कि उन्होंने तो घर बार भी छोड़ दिया था, जो माल था सब कुछ दे दिया था, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और अल्लाह की दीन की नुसरत और खिदमत में सब करना चाहिए।
दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक आपकी अमूमी ज़िंदगी है, उसको पूरे तवाज़ुन के साथ गुजारना चाहिए। यानी आपके बच्चे हैं, आपके घर वाले हैं, आपके वालदैन हैं, आपके अज़्ज़ा व अक़रबा हैं, उन सब के हुकूक अदा करने चाहिए। अल्लाह ताला ने जो फितरत का निज़ाम बनाया है, किसी हाल में उससे एक कदम भी आगे नहीं रखना चाहिए। अल्लाह के पैगम्बर ने हमें जो तालीम दी और जो उसवा आपका सामने आया, उनसे बढ़कर तो कोई नहीं हो सकता। वो यही है कि लोगों ने शादियां भी की, लोगों ने बच्चे भी पैदा किए, लोगों ने अपने आइज़्ज़ा के हुकूक भी अदा किए, उनकी ज़िम्मेदारियां भी पूरी की, बल्कि उससे आगे बढ़कर दोस्तों के साथ, ताल्लुक़ वालों के साथ भी उन्होंने जो खैर और नेकी कर सकते थे वो की। यही सही बात है, क्योंकि इंसानी माशरत की बुनियाद इसी के ऊपर रखी गई है। ये आप जानते हैं कि हमारे दीन में सिला रहमी की कितनी ताकीद की गई है, और ये फरमाया गया है कि जो आदमी सिला रहमी नहीं करता या कतई रहमी करता है, वो अल्लाह के बनाए हुए नज़म को दरहम बरहम करता है। तो आपकी औलाद, आपके बच्चे, आपके घर वाले, ये सब अल्लाह की बनाई हुई स्कीम का हिस्सा हैं। इनमें से किसी जगह पर भी किसी पहलू से मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो कुछ भी आप खिदमत कर रहे हैं या दीन सीख रहे हैं या तालिब इल्म हैं, उसमें इन सब को एक तवाज़ुन और इतदाल के साथ इनकी जगह पर रख कर जो कुछ भी आपको करना है वो आप करें। पहली बात, बुनियादी बात ये। इसके बाद ये कि किसी वक्त कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई, इमरजेंसी का मामला हो गया, उसमें आपसे ये तकाजा किया जाता है कि आप आगे बढ़कर इशार करें। वो तकाजा भी क्या कोई लाजमी तकाजे के तौर पर पैगंबर की ज़िंदगी में सामने आया? यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो जो बड़ा मशहूर वाक़िया है कि सैयदना उमर ने आके अपना आधा माल पेश कर दिया, या सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सारा माल पेश कर दिया, उसमें भी आपने ये कहा कि अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा। तो गोया तवज्जो दिलाई कि जो जिम्मेदारियां हैं वो हर हाल में पूरी करनी चाहिए, अगरचे वो बड़ी इमरजेंसी का मौका था। ये तो देखिए, आपके यहाँ कोई कहत पड़ गया, आपके यहाँ कोई वबा फैल गई, इस तरह के मौक़ों के ऊपर घर खाली कर दिए जाते हैं, जो कुछ आपके पास है वो दे दिया जाता है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इसके ऊपर एक आरिफ ने बहुत अच्छा तबसरा किया था, और तबसरा भी एक इस्लामी जमात के नज़मी पर करते हुए उन्होंने ये फरमाया था कि अगर आप आम हालात में हालत जंग के मुतालबात करेंगे तो आप फितरत के साथ लड़ना शुरू करते हैं। तो एक है आम हालात में आपको क्या करना है। आम हालात में लोगों को इतदाल और तवाज़ुन की तालीम देनी चाहिए, और हुकूक व फ़राइज़ के लिए अल्लाह ताला ने जो कायदा मुकर्रर किया है उसी के मुताबिक बात करनी। जो सूरह अनफाल के आखिर में फरमाया ना कि अल्लाह की किताब में जो रिश्ते हैं और उनका जो कुछ ताल्लुक है और उनकी जो एक तदरीजी जगह है वो तय कर दी गई है, वो अल्लाह की किताब में तय है। तो चुनाचे आप पर जो पहली ज़िम्मेदारी है वो आपके घर वालों की है, आपके अज़्ज़ा की है, आपके अकरबा की है, आपके दोस्त अहबाब की है, आपके पड़ोसियों की है। इसके साथ अल्लाह ताला तौफीक दे, दीन की खिदमत करें, दीन की दावत में सरगर्म हों। इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स दीन की दावत को या दीन के तालीम व तालुम को या दीन में तसनीफ़ व तालीफ को अपनी ज़िंदगी का असली काम बनाना चाहता है, तो उसको इसकी इस ये नहीं करना चाहिए कि अपने आयज़ा अकरबा की जगह ये ले आए, नहीं, अपनी माश की जद्दोजहद की जगह ये ले आए।
अच्छा।
इसलिए कि हर आदमी माश की जद्दोजहद तो करता है, तो अगर अल्लाह उसके लिए कोई असबाब पैदा कर दे तो वो इस जगह पर अपना पूरा वक्त दे सकता है। चुनाचे बड़े बड़े अकाबिर की ज़िंदगी को हम देखते हैं कि वो ऐसे ही करते थे। ये बात अलबत्ता अलग है कि कोई आदमी किसी मौके पर अपने किसी शौक़ में, वो साइंस के इल्म का शौक़ हो सकता है, बहुत से लोगों को कारोबार का ऐसा शौक़ होता है कि वो ये कहता है कि मैं शादी ही नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने जो एक ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने उठाने के लिए उसके इख्तियार पर मामला रखा था, اس کو اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ بھی کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہوگی, لیکن بعض حالات میں اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے. اس کے اس فیصلے کے باوجود جو رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن رہے ہیں ان میں کیا کریں گے؟
ماں تو
ماں باپ ہیں تو ہیں, بہن بھائی ہیں تو ہیں, آپ کے اعزہ اقربا ہیں تو ہیں, ان کو تو آپ رخصت نہیں کر سکتے. لیکن اگر فرض کیجئے آپ نے شادی کر لی ہے, ایک خاتون آپ کے گھر میں آ گئی ہے, تو اب اس کے حقوق وہ آپ کو ہر حال میں پورے کرنے ہیں. چنانچہ اس طرح کا استدلال کرنا کہ میں فلاں دین کے کام میں جا رہا ہوں, اب میرے گھر والوں کو اللہ خود دیکھ لیں گے, سوال یہ ہے کہ اللہ نے ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے دیکھنے کی. تو اللہ تعالیٰ کا جو اپنا کام ہے اس میں آپ جا رہے ہیں, اور جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اس کو آپ دیکھ نہیں رہے. تو پوری طرح توازن کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے شوق بھی پورے کرنے چاہیے. جب آپ اس توازن کو مجروح کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں, ان پر زیادتی کرتے ہیں, اور اس سے معاشرت میں, تہذیب میں, تمدن میں ایسا خلل پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے جب نتائج نکلتے ہیں تو آدمی خیال کرتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہی صحیح ترین قانون ہے.
ٹھیک, اچھا ہم سب ایک اور آخری پہلو مختصر واضح کیجیے گا. بسا اوقات ہم نے دیکھنے میں آیا آج کل یہ موبائل فون ہر وقت ہاتھ میں آ جاتا ہے, لوگ ہوتے تو گھر والوں کے پاس اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تمہیں وقت دے رہے ہیں, لیکن فون پہ وہی کسی عالم کی تقریر, کسی کا واعظ قصہ, کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہونا, یہ بھی حق تلفی ہے گھر والوں کے؟
اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس کے بلکہ اور بھی برے نتائج و اثرات ہیں. اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے کچھ وقت مقرر کیا جائے, اور اگر ادھر وقت مقرر کرنا ممکن نہیں, کوئی ذمہ داری کا معاملہ ہے, تو ادھر وقت مقرر کیا جائے. یعنی طے کر لیں کہ اتنا وقت بہرحال بچوں کو دینا ہے, اتنا گھر والوں کو دینا ہے, ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. یہ معاملہ کوئی تبرع کا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے کر لیا مرضی ہے نہیں کیا. جب ہم نے شادی کر لی تو بیوی کے حقوق قائم ہو گئے, کسی خاتون نے شادی کر لی تو شوہر کے حقوق قائم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا اسلوب اختیار کیا قرآن مجید میں, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, جیسے عورتوں کے اوپر فرائض ہیں اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں. یہی صورت مردوں کے بارے میں ہے. تو یہ حقوق ہر حال میں ادا کرنے ہیں, کیونکہ حق تلفی کو قرآن مجید اسم کہتا ہے, یہ بالکل ناجائز ہے, حرام ہے. تو حقوق پورے کرنے کے لیے اگر وقت کا معاملہ ہے تو وقت طے کیجیے, اگر مال خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں ترجیح قائم کیجیے. یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے, اس میں ہم اپنی مرضی سے ترمیم نہیں کر سکتے. اور اس طرح کے کسی استدلال کو تو سننا بھی نہیں چاہیے کہ آپ اگر کسی دینی دعوت میں ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے تو اب آپ اولاد پیدا نہ کریں, یا آپ ماں باپ کے حقوق ادا نہ کریں, یا بیوی کے حقوق ادا نہ کریں, یا رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیں. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ بالکل دین کے خلاف ہے.